Very happy to be with you again today.
बहुत प्रसन्न हूँ वापस आपके साथ आज होकर के.
It's a great privilege to study the Word of God together.
ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर के वचन को हम साथ में पढ़ सकते हैं.
But if we're going to properly preach the Word of God,
अगर हम परमेश्वर के वचन को कायदे से प्रचार करेंगे,
we must be willing to work hard and study hard.
तो जैसे मैंने बार बार कहा है, हमें मेहनत करने के लिए और अध्ययन करने के लिए तैयार होना पड़ेगा.
Look in the book of Ezra.
एज़रा की पुस्तक में देखिए,
very familiar verse,
बहुत ही जानी पहचाने पद है यहाँ पे,
and it serves as a good example for the preacher.
और ये प्रचारकों के लिए एक उदाहरण के रूप में आती है.
Before we begin, let us be encouraged by this example.
इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम एज़रा के उदाहरण के द्वारा उत्साहित हों.
Ezra in chapter 7.
एज़रा उसका सातवें अध्याय में.
This should be our own character.
और ये हमारे स्वयं का चरित्र होना चाहिए.
And verse 10.
और उसका दसवां पद.
It says Ezra set his heart to study the law of God and to do it and to teach it to Israel.
और एज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अध्ययन करने, उस पर चलने और इज़राइल में उसकी विधि और नियम सिखाने में अपना मन लगाया.
Notice several things.
ध्यान दीजिए बहुत सारी बातें यहाँ पे.
It was a fixed conviction and desire of his heart.
ये उसके हृदय की एक पक्की हुई सीधी इच्छा थी कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन करे.
The purpose and calling in his life was bound up with the word of God.
उसके जीवन का उद्देश्य और बुलाहट परमेश्वर के वचन में मिली हुई थी, बंधी हुई थी उसके द्वारा.
So the attitude of his heart was one of fixed and determined conviction.
तो उसका जो हृदय का जो मनसा थी वो यह थी, भावना थी कि परमेश्वर के वचन के आधार पे बंधी हुई.
Number two, look at the object of his conviction and attention.
दूसरी बात, उसके उसका जो हृदय की जो मनसा है, भावना है, उसके विषय वस्तु को देखिए यहाँ पे क्या है.
It was the law of God. It was the word of God.
ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के नियम है, व्यवस्था.
If you are a preacher, you have the responsibility to study hard the word of God.
अगर आप परमेश्वर के वचन के प्रचारक हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन मेहनत से करें.
The doctor has his medical books.
जो डॉक्टर लोग होते हैं उन लोग पास अपने.
The lawyer has his legal books.
जो लॉयर होते हैं, लॉयर जो वकील होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, उनकी अपनी अपनी किताबें होती हैं, चाहे लॉ से संबंधित या दवाई से संबंधित.
You have one book.
आपके पास एक ही पुस्तक है.
One life.
एक ही जीवन है.
One calling.
एक ही बुलाहट है.
One responsibility.
एक ही जिम्मेदारी है.
To love this book.
इस पुस्तक से प्रेम करिए.
To live in this book.
इस पुस्तक में जीवन
व्यतीत करिए. To study this book.
इस पुस्तक का
अध्ययन करिए. To meditate on this book.
इस पुस्तक पे मनन करिए.
That is your great privilege and high calling.
ये आपकी एक बड़ी बुलाहट है और एक बड़ा ही सौभाग्य की बात है.
But notice number three, his life.
लेकिन तीसरी बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे उसका जीवन के बारे में क्या लिखा है.
It says not only did he study the law of God, he practiced it and he did it.
और यहाँ पे लिखा है, ना सिर्फ उसने परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया, लेकिन लेकिन उसके अनुसार उसने अपना जीवन भी व्यतीत किया.
Before he taught others, he would teach himself.
इससे पहले कि वो दूसरों को सिखाए, उसने पहले खुद अध्ययन किया.
You have the responsibility to be a living example of obedience to the word of God.
ये आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के वचन के जीवित आज्ञा पालन का उदाहरण हमें लोगों के सामने बनना है.
If you tell your people to obey God, you must obey God.
अगर हम अपने लोगों से कहते हैं कि हमें आपको परमेश्वर के वचन पालन करना है, तो हमें और आपको भी पालन करना है परमेश्वर के वचन का.
If you tell your people to grow in holiness, you must grow in holiness.
अगर हम लोगों से कहते हैं कि आपको पवित्रता में बढ़ना है, तो हमको और आपको पवित्रता में बढ़ना
होगा. Men to love their wives, you must love your wife.
तो अगर हम और आप कहेंगे कि लोगों को अपने पत्नियों से प्रेम करना, तो आपको और हमको पहले अपने पत्नियों से
प्रेम करना है. If you tell men that they must teach their children, you must teach your children.
अगर हम अपने लोगों से कहें कि आपको अपने बच्चों को सिखाना, तो पहले हमें अपने बच्चों को सिखाना
होगा. What you say and what you do must be the same thing.
जो भी हम कहें और जो हम करें, वो दोनों बराबर एक ही.
You must be a living example of what you teach.
और जो हम सिखा रहे हैं, उसका हमें जीवित उदाहरण होना चाहिए.
You must feed yourself first of all on the word. word of God.
हमें परमेश्वर के वचन पर अपने आप को खाना है, भोजन करना, भोज करना.
Live in this book.
इस पुस्तक में जीना
love
है.
Love this book.
इस पुस्तक से प्रेम
read
करना
this
है.
Book.
इस पुस्तक का
study
अध्ययन करना
this
है.
Book.
इसको पढ़ना भी है.
Then, as it says, you are able to teach his statutes and ordinances to Israel.
तभी उसके बाद हम इज़राइल में जैसे यहाँ पे लिखा है लोगों को विधियों नियम सिखाने पाएंगे.
Notice the progression.
ध्यान दे रहे हैं कि कैसे यहाँ पे एक के बाद एक क्रम आ रहा है यहाँ
the
पे.
Conviction, the desire, and the burden of the heart.
और यहाँ पे हृदय की इच्छा, हृदय की विचारधारा और हृदय का बोझ.
The practice and example of the life.
और जीवन का चाल चलन और जीवन का उदाहरण.
And then the clear teaching to the people.
और फिर उसके बाद लोगों के सामने स्पष्ट शिक्षा.
God calls you to that life.
परमेश्वर आपको उस जीवन के लिए बुला रहा है.
So as we study the word of God, we must remember our calling and our responsibility.
और जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो हमें अपने बुलाहट और अपने जिम्मेदारी को ध्यान में रखना है, भूल नहीं जाना है.
Every time I stand up to teach the Bible.
जितनी बार मैं परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए खड़ा होता हूँ.
I try to think this.
मैं ये सोचता हूँ.
This may be the last time that I ever teach the word of God.
तो मैं ये सोचना हो सकता है ये आखिरी बार है जब मैं परमेश्वर के वचन को सिखा रहा हूं.
We need to have a sense of urgency.
और हमारे सामने एक 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 भावना होनी चाहिए कि सब कुछ जल्दी होने वाला है.
We need to teach the word of God in light of eternity.
और हमें अनंत काल के प्रकाश में वचन को सिखाना है.
Love it.
प्रेम करना उसे.
Do it.
करना है उसको.
Teach it.
और सिखाना है उसको.
That is what Ezra teaches us.
यही एज़रा हमको यहाँ पे सिखाता है.
So we want to continue to study by review this morning several important truths.
और आज की सुबह हम अपने अध्ययन को जारी रखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण सत्यों को देखेंगे, हम सीखेंगे.
Now the questions on our exam have moved from basic gospel truths. Now we're moving into issues. A practical Christian life.
और अब हम लोग सुसमाचार के विषयों से आगे बढ़ करके जीवन के व्यवहारिक विषयों के बारे में बात करेंगे.
We've asked these questions. What is the gospel?
हमने बात किया है विश्वास सुसमाचार क्या है.
What does it mean to be in Adam?
और आदम में होने का मतलब क्या है.
What does it mean to be under the law?
और व्यवस्था के अधीन होने का मतलब क्या
है. What is true conversion?
सच्चा हृदय परिवर्तन क्या है.
What is the order of salvation?
सुसमाचार का क्रम क्या
What
है?
Is faith and repentance?
और विश्वास और पश्चाताप क्या है?
It's not enough to write it in your book.
ये सिर्फ अपनी किताबों में लिखने
you
काफी
must study
नहीं है.
These things.
लेकिन हमें इन
you
बातों
must
का अध्ययन
understand
करना
these things.
इन बातों को हमें समझना
you
है.
Must go deeper in your understanding.
हमें अपनी समझ में और भी अधिक गहराई में जाना
है. The clearer it is in your own mind, the clearer it will be in your mouth.
हमारे मस्तिष्क में जितना और स्पष्ट होता जाएगा उतना ही हमारे मुख में भी स्पष्ट होगा.
If you are unclear about biblical truth in your mind, it will be unclear in your mouth.
अगर हम अपने बाइबल के सत्यों के बारे में अपने दिमाग में नहीं स्पष्ट होंगे तो हमारे मुख में वो बातें स्पष्ट नहीं होंगी.
वेरी हार्ड टू स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड.
और परमेश्वर के वचन को पढ़ना बड़ा ही मुश्किल है, कठिन है.
चर्च इन अमेरिका फॉर 20 इयर्स.
मैं अमेरिका में कलीसिया में लगभग 20 साल तक पासवानी का काम किया
मैंने. एंड एवरी वीक आई प्रीच 4 और 5 न्यू मैसेजेस टू द सेम पीपल.
और हर सप्ताह में 4 या 5 नए संदेश उन्हीं लोगों को बताता था.
एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट.
और बड़ा मुश्किल था उस समय.
एंड एवरी डे
प्रतिदिन
I had to study.
मुझे अध्ययन करना पड़ता था. मुझे प्रार्थना करना पड़ता था.
I couldn't be lazy.
मैं आलसी नहीं हो सकता था.
I could not serve up leftover old food.
मैं बचा हुआ पुराना खाना नहीं लोगों को दे सकता था.
I had to prepare fresh food every week.
तो प्रति सप्ताह मुझे नया भोजन तैयार करना पड़ता था.
Feed the people of God.
ताकि परमेश्वर के लोगों को मैं भोजन खिला सकूं.
I couldn't dig around in other people's garbage can.
मैं दूसरे लोगों के गंदगी के डब्बों में नहीं खाना ढूंढ सकता था.
I had to prepare my own message.
मुझे अपने खुद के संदेश को तैयार करना पड़ता
था. And I had to work very hard.
और मुझे बड़ा मेहनत करना पड़ता था.
And if you're going to be a pastor,
अगर आप लोग एक पास्टर बनना
चाहते हैं, if you're going to teach the word of God,
अगर आप सुसमाचार के वचन बनना
चाहते हैं, you must take up your cross.
तो आपको अपना क्रूस उठाना
है. You must die to self.
आपको स्वयं के लिए मरना है.
You must be willing to pay a great price.
और आपको एक बड़ी कीमत चुकानी
है. And you must deepen in your understanding of the truth.
और सत्य के समझ में आपको अपनी समझ को और गहरी करना है.
So that's why we've been asking these questions and reviewing these very basic truths.
इसीलिए हम इन प्रश्नों को पूछ रहे हैं और इन बड़े ही आधारभूत सत्यों को हम समझने की कोशिश करें, पुनरावृत्ति करें।
So today we want to answer these questions.
और इसलिए आज हम इन प्रश्नों का उत्तर देंगे।
What is sanctification?
पवित्रीकरण, शुद्धिकरण क्या है?
What does it mean to be in Christ?
यीशु मसीह में होने का मतलब क्या है?
What is the believer's relationship to the law?
एक विश्वासी का संबंध व्यवस्था से क्या है?
What is gospel obedience?
और सुसमाचार पर आधारित आज्ञाकारिता क्या है?
These are very basic but very important subjects.
ये बड़े ही आधारभूत किंतु बड़े ही महत्वपूर्ण विषय हैं।
You must understand it.
हमें आपको इसे समझना है।
You must live it.
हमें इनके अनुसार जीना
है। And you must clearly teach it.
और फिर इनको स्पष्टता से प्रचार
करना है। So we asked this question on the little exam.
तो हमने उस परीक्षा में कल प्रश्न पूछा था।
We said sanctification.
और हमने पूछा था पवित्रीकरण।
The Bible speaks of it in three ways.
पवित्रकरण के बारे में बाइबल तीन तरीके से बात करती है।
What are those three ways?
वो तीन तरीके क्या हैं?
It's very important that you be able to define and distinguish these particular things.
ये बहुत ही जरूरी है कि आप इन तीन बातों को परिभाषित कर सकें और उनके बीच में फर्क और भिन्नता बता सकें।
Now in past days we've looked at this before.
और पिछले दिनों में हमने इसके बारे में बात किया थोड़ा सा।
But some of you have not been here.
और आप में से कुछ लोग यहाँ नहीं थे।
Plus it's easy to forget.
और साथ में हम लोग भूल जाते हैं आसानी से।
And I want to stir you up by way of reminder.
और मैं आपको याद दिलाने के उससे उत्साहित करना चाहता हूँ।
How do we learn?
कैसे याद करते हैं
लोग? By constant repetition.
बार-बार दोहराने के द्वारा।
Not just mouthing the words,
केवल शब्दों को मुंह से बोलने के द्वारा
but having a deepening understanding of the meaning.
और लेकिन अर्थ का बहुत ही गहरा प्रभाव होने के द्वारा समझने के द्वारा।
How did you answer that question?
तो आपने कैसे उत्तर दिया?
You said the Bible when it speaks of sanctification speaks of it in several distinct ways.
पवित्रीकरण के बारे में बाइबल अनेक तरह से बात करती है पवित्रीकरण के बारे में।
What was the first way?
सबसे पहला तरीका क्या है कि पहली कौन सी बात
we're not talking about justification.
हम धर्मी ठहराए जाने के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम पवित्रीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। इतना तो फर्क समझ लेना आप लोग ना।
Sanctification.
तो हम लोग पवित्रीकरण या शुद्धिकरण के बारे में बात कर रहे हैं। उनमें तीन बातें हैं।
Bible emphasizes three different ways in which we discuss this.
अब आप परमेश्वर का वचन हमको बताता तीन विभिन्न तरीके जिनमें हम पवित्रीकरण के बारे में बात करते हैं। तो क्या आप हम लोग को बताएंगे कौन से वो तीन बातें हैं?
Number one,
सबसे पहली बात क्या है वो?
You tell me.
आप हमें बताइए। हाँ, हिंदी में। हिंदी में कोई बताएगा? ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन यद्यपि वो हमेशा चलने वाली प्रतिक्रिया है, लेकिन उसके बारे में तीन तरीके से बाइबल बात करती है। कौन से वो तीन तरीके हैं? पहला, हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं आपने? क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, फेंके नहीं है? इम्पार्टेशन कहाँ फेंक रहे हैं हम लोग? नहीं नहीं, हाँ जी, हाँ, अस्थानीय मतलब, हाँ, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। तो जो पहला वाला है वो मतलब वो अवस्था को दर्शाती है, दशा, हमारी स्थिति को दर्शाती है। तो हो गया पहली है पोजिशनल अंग्रेजी में ना,
सॉरी, आई मीन डेफिनेटिव और पोजिशनल।
तो ये निश्चित तौर से पूरी तरह से ये हमारी अवस्था है, दशा, ये हमारा स्थान है प्रभु के सामने। मतलब हम पवित्र बनते तो जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने हम क्या है, हमारी स्थिति क्या है परमेश्वर के सामने? पवित्रता की स्थिति है, ये हमारी स्थिति है, ये हमारी अवस्था है, ये हमारा स्थान है, ये हमारी दशा है। तो पहला अवस्था या दशा या स्थान,
और इनिशियल, फर्स्ट,
निश्चित है, पहला है, आरंभिक है, पक्का।
When does this happen?
कब होता है, कब हमको इस तरह से परमेश्वर हमको पवित्र देखता है इस तरह से? कब कब आरंभिक? कब? जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर। When we believe in Christ.
When we believe in Christ.
जब हम विश्वास करते हैं तो वो हमारी स्थिति ये होती है कि हम
Now remember what we said, holiness means holiness.
याद है आपको हमने क्या कहा था? पवित्रता का मतलब क्या है, याद है आपको?
It is the idea of being consecrated or set apart for a peculiar purpose.
ये इसका ये मतलब है कि हम एक विशेष उद्देश्य के लिए अलग किए गए हैं इस्तेमाल करने के लिए.
And when a person believes in Jesus Christ, he is consecrated or set apart to God.
जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास करता है तो वो परमेश्वर के लिए अलग किया जाता है उपयोग के लिए.
Now all Christians are immediately set apart as distinct and they're called saints.
और सारे विश्वासी लोग जैसे ही यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं एकदम से उनको अलग कर दिया जाता है और बाइबल उनको संत करके बुलाता है.
Let's look at several verses.
आइए हम लोग कई पदों को देख लेते हैं.
Look in the book of Acts.
प्रेरितों काम की पुस्तक में देखिए.
Acts in chapter 20.
उसके 20 अध्याय में देखिए.
Paul is exhorting the elder, the leaders of the church at Ephesus.
यहाँ पे इफिसियों के अगुओं को पौलुस उत्साहित कर रहा है.
And notice what he says in verse 32.
देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है 32 पद.
This is his conclusion.
ये है इसका निष्कर्ष.
He said, "Now I commend you to God and the word of His grace."
वो कहता है अब मैं तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह के वचन के हाथ सौंपता हूँ.
And that word is able to build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified.
जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और मिराश दे सकता है सब पवित्र किए गए लोगों के साथ.
If you are a preacher,
यदि आप एक प्रचारक हैं,
you are commended and committed to God.
तो आप परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं
और परमेश्वर committed to the word of God.
और आप परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित हैं.
And that word is able to build you up.
और वो वचन आपको बना सकता है उठा सकता है.
And that word is able to give you an inheritance.
और वो वचन आपको एक inheritance देगा.
Among all those that are sanctified.
उन सब के बीच में जो लोग परमेश्वर द्वारा पवित्र किए गए मिराश देगा.
And now this word has the idea of they have already been set apart in a permanent, unchangeable position.
और यहाँ पे जो बात हो रही है यहाँ पे इसमें यहाँ पे उस बात हो रही कि इन सब को हमेशा के लिए स्थायी रूप से इनकी एक स्थिति एक दशा बताई जा रही है.
This is something that happened to them.
ये एक ऐसी चीज है जो उनको हुई है.
Something that God did to them.
और ये जो पवित्रता की बात है परमेश्वर ने उनको किया.
And when a person believes,
जब एक व्यक्ति विश्वास करता है,
he is set apart and consecrated to God.
वो परमेश्वर के लिए अलग कर दिया था और परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरा दिया था, शुद्ध ठहरा दिया
था. And the word has the idea also of a permanent, fixed and unchangeable position.
और इस शब्द का ये भी मतलब है कि एक निर्धारित ना बदलने वाले स्थायी स्थिति.
You have been bought with a price.
आपको एक कीमत से खरीदा गया है.
You are not your own.
आप अपने नहीं हैं.
You belong to him.
आप उसके हैं.
He has brought you out of darkness into light.
उसने आपको अंधकार से ज्योति में लेके
आया है. He brought you out of the dominion of the devil into the kingdom of his son.
वो शैतान के राज में से निकाल करके अपने पुत्र के राज में प्रवेश कराया उसने.
And if you are a Christian,
और यदि आप एक मसीही हैं,
especially if you are a preacher,
विशेष तौर अगर आप
प्रचारक हैं, you are set apart to God.
तो आप परमेश्वर के लिए अलग किए
गए हैं. Set apart to the word of God.
और आप परमेश्वर के वचन के लिए अलग किए गए.
Paul said he was called and set apart for the gospel of God.
पौलुस कहता है कि उसको सुसमाचार परमेश्वर के सुसमाचार के लिए बुलाया गया और अलग किया गया.
There he's talking about his ministry.
वहां पे वो अपनी सेवकाई के बारे में बात
कर रहा है. But all Christians are consecrated and set apart to God.
लेकिन सारे विश्वासी लोग यीशु मसीह परमेश्वर द्वारा बुलाए गए हैं और सेवा के लिए अलग किए गए हैं.
So this is what
परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं.
This is what Paul is saying.
यही बात यहाँ पे पौलुस कह रहा है.
At the moment of conversion,
हृदय परिवर्तन के समय में,
God takes them,
परमेश्वर लेता
है
उनको,
acts upon them,
परमेश्वर उनके ऊपर काम करता
है, sets them apart,
और फिर उनको अलग कर देता है,
and they are in a fixed, permanent, unchangeable position.
फिर आप बोलो निर्धारित स्थायी ना बदलने वाली अवस्था या दशा में ठहरा देता है परमेश्वर उनको बना देता है.
He has broken them from the world.
अब परमेश्वर ने विश्वासियों को जो विश्वास किया उनको संसार से तोड़ दिया, उनके पापों से अलग कर दिया है.
He has broken them from the law.
और व्यवस्था से भी तोड़ करके उनको अलग कर दिया परमेश्वर ने.
And he has set them apart to himself.
और परमेश्वर ने उन सब चीजों से स्वतंत्र करके अपने लिए उनको अलग करके रख
लिया. First Corinthians.
पहले कुरिन्थियों में देखिए और ये एक स्थायी स्थिति है.
And chapter 1.
पहला कुरिन्थियों उसका पांचवा पहले अध्याय देख लीजिए. स्थाई निर्धारित परमेश्वर की ओर से किया गया काम स्थिति अवस्था दशा आरंभिक.
I've asked you this question before.
मैं आपसे प्रश्न पहले भी पूछ चुका हूं.
What church in the entire New Testament probably gave Paul the most problems and the most headaches?
अच्छा हमको ये बताइए, नए नियम में जितनी कलीसियाएं हैं उन कलीसियाओं में से ऐसी कौन सी कलीसिया है जिसने पॉलुस को सुबह सुबह मुहम्मत फाड़िए सबसे ज्यादा परेशान किया, दिक्कत दी, समस्या खड़ी की? कौन सी कलीसिया है वो? उनके बीच में बंटवारे थे, बिखराव था.
They had immorality.
उनके अनैतिकता थी.
They had lawsuits with one another.
और एक दूसरे के ऊपर वो लोग केस कर रहे थे.
They had confusion regarding the resurrection.
और पुनरुत्थान के संबंध में उनके सामने बड़ी भ्रम था.
They were not properly practicing the Lord's Supper.
प्रभु भोज को वो लोग सही तरीके से कर नहीं रहे थे.
They were very immature.
बहुत ही ना समझदार, अपरिपक्व लोग थे.
But notice chapter 1.
लेकिन ध्यान दीजिए पहला अध्याय.
And verse 2.
और दूसरा पद.
What does Paul say?
देखिए पौलुस क्या कहता है.
The church of God at Corinth to those who have been sanctified in Christ Jesus, saints by calling.
और पौलुस दूसरे पहले ग्रंथ पहला अध्याय दूसरे पद में इन लोग कहता है परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कोरिंथ में उनके नाम से यीशु मसीह में पवित्र किए गए हैं.
He calls them saints.
और फिर उनको कहता है प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते पवित्र लोग, उनको पवित्र कहलाता है उनको.
And he says you have already been sanctified.
और वे कहता है कि तुम लोग पहले ही पवित्र कर दिए गए, उनको संत करके बोलता
है. God has set you apart.
परमेश्वर ने आपको अलग किया है.
You have a new position.
आपकी एक नई स्थिति है, अवस्था है, दशा है.
You are holy.
आप पवित्र हैं.
Now listen carefully.
ध्यान सुनिए इस बात को.
There is holiness in position and there is holiness in practice.
और दो चीजें हैं, एक है हमारी अवस्था या दशा में पवित्रता, दूसरी है हमारे कार्यकलापों या हमारे कार्यों में अवस्था.
All Christians are holy in position.
जितने भी विश्वासी सब लोग उनकी अवस्था, दशा में, स्थिति में परमेश्वर की निगाह में पवित्र हैं.
That simply means they are consecrated and set apart.
उसका मतलब यह है परमेश्वर के द्वारा शुद्ध किए गए, पवित्र किए गए और अलग किए गए परमेश्वर के कार्य के लिए.
But
सारे विश्वासी लोग
Christians are holy in practice.
लेकिन सारे विश्वासी लोग अपने क्रियाकलापों में, कार्यो में, प्रतिदिन के रोजमर्रा के जीवन में पवित्र नहीं
है. The Corinthians were not holy in their practice and in their life.
तो इसी तरह से कुरिन्थियों के विश्वासी लोग अपने प्रतिदिन के जीवन में पवित्रता को कार्यकलाप में नहीं दिखा रहे थे.
But they had been set apart to God.
यद्यपि उन लोगों को परमेश्वर के काम के लिए अलग कर दिया गया था, परमेश्वर के लिए निमित्त.
And he says you have already been sanctified.
और यहां पे ये कहता है कि तुम पहले ही पवित्र कर दिए गए हो.
Look at one other example.
एक और उदाहरण देख लीजिए मेरे साथ.
Hebrews.
इब्रानियों की पत्री.
Hebrews in chapter 10.
Now
we're talking about a very important subject.
हम लोग एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में
बात
करें.
Talking about the teaching of sanctification.
यहाँ पे हम लोग पवित्रीकरण के शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं.
And the Christian must understand their new position.
और एक मसीही को अपनी नई अवस्था, स्थिति को समझना होगा.
And they must slowly grow in their condition so that it would match their position.
और जो उनकी अवस्था या दशा या स्थिति है उसमें इनको धीरे धीरे प्रतिदिन बढ़ना होगा ताकि ये प्रतिदिन की जो रोजमर्रा का उनका जीवन है और जो अवस्था है उसमें मेल मिलाप हो सके, मिलन उसके बराबरी हो सके.
Hebrews chapter 10.
इब्रानियों का दसवां अध्याय.
And verse 10.
और दसवां पद.
Look at it carefully.
ध्यान से देखिए इसको एक बार.
By this will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus once for all.
इसी इच्छा के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं यीशु मसीह के देह के एक बार सदा के लिए बलिदान चढ़ाए जाने से.
Now here the word again means God has acted on them.
और यहाँ पे पवित्र शब्द का मतलब ये है कि परमेश्वर ने इन लोगों के ऊपर कार्य किया है, कार्यवंत हुआ है.
He's not talking about them sanctifying themselves.
इसका ये यहाँ पे इन लोगों के स्वयं को, अपने आप को पवित्र करने के प्रयास के बारे में बात नहीं
He
कर
said,
रहा
God
है.
has sanctified you.
लेकिन वो कह रहा है कि परमेश्वर ने तुमको पवित्र किया है.
And the word also indicates a permanent, fixed, unchangeable position.
और यहाँ पे ये शब्द दिखाता है ऐसी अवस्था को, दशा को, स्थिति को जो स्थाई है, हमेशा के लिए है, बदलने वाली नहीं है.
He said you have already been positionally set apart and sanctified.
तो दूसरे शब्द में यहां पे ये कह रहा है कि तुम परमेश्वर के सामने तुम्हारी स्थिति, अवस्था, दशा पवित्रता की हो गई है, परमेश्वर के द्वारा अलग कर दिए गए.
Verse 14.
पाँच चौदह पर.
He says it again.
फिर से कहता है वहां पे
By one offering he's perfected for all time those who are sanctified.
एक ही बलिदान के द्वारा उसने उनको जो पवित्र किए जाते हैं सदा के लिए सिद्ध कर दिया है.
Or he could say by one offering he has perfected forever those who have already been sanctified.
यहां पे दूसरे तरह से यहां पे ये शब्द इस तरह से भी कह सकता था क्योंकि उसने एक ही बलिदान के द्वारा उनको जो हमेशा जो पवित्र किए जा चुके हैं सदा के लिए सिद्ध करता है.
So you need to understand your new position.
तो आपको और हमको अपनी नई स्थिति अवस्था दशा को समझना है कि हम प्रभु में क्या हैं.
And you need to teach your people their new position.
और हमें और आपको लोगों को परमेश्वर को उनकी नई दशा या अवस्था या स्थिति को बताना है समझाना है.
They have been bought with a price.
उन्हें कीमत चुका के खरीदा गया.
They have been brought out of darkness.
उन्हें अंधकार में से बाहर निकाला गया है.
They have been set apart to God.
वे परमेश्वर के लिए अलग ठहरा दिए गए हैं.
You remember we saw before in the Old Testament the usages of this word.
क्या आपको याद है पहले हमने पुराने नियम में इस शब्द के उपयोगों को देखा था.
The priest in the Old Testament.
जो पुराने नियम में जो याजक लोग होते हैं.
When it describes his clothing,
जब वो उसके कपड़ों को वर्णन करता है.
He had a turban upon his head,
उसके सर पे एक पगड़ी होती थी.
Just about like that,
जैसे भाई हैं उनके सर में पगड़ी उसी के जैसे.
And he had written on it these words,
और उसके माथे पे ये शब्द लिखे होते थे.
Holy to the Lord,
उसके माथे पे लिखा होता था ये शब्द परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के निमित्त पवित्र.
What did that mean?
उसका मतलब क्या हुआ?
That man that wore that sign,
मतलब ये था वो याजक जो ये चिन्ह को पहने हुए था अपने मस्तिष्क पर,
set apart to God.
वो परमेश्वर के निमित्त परमेश्वर के लिए अलग ठहरा दिया गया था.
He was separated from other people.
वो अलग दूसरे लोगों से अलग कर दिया गया
था. Totally consecrated to God.
वो परमेश्वर के लिए पूरी तरह से शुद्ध कर दिया गया था.
He had a special function, special ministry.
उसके पास एक विशेष कार्य थे, विशेष सेवा थी.
And he belonged to God.
और वो परमेश्वर का था, उससे संबंध था उसका.
If you are a Christian,
यदि आप एक मसीही हैं,
and especially if you are a preacher,
और विशेष तौर से अगर आप एक प्रचारक हैं,
God has written those words on your heart.
तो परमेश्वर ने आपके हृदय पे इन शब्दों को लिखा है.
You are set apart to God.
तुम परमेश्वर के निमित्त अलग किए गए हो, परमेश्वर के लिए अलग किए गए हो. ये परमेश्वर ने आपके हमारे हृदय पे ये शब्द लिखे हैं अगर हम यीशु मसीह के विश्वासी हैं.
All Christians have been positionally sanctified.
ये बड़ी अद्भुत बात है कि जितने विश्वासी लोग मसीह लोग हैं उन सब की स्थिति अवस्था दशा परमेश्वर के सामने पवित्रता की है.
But listen carefully.
ध्यान से सुनिए इस बात को.
Not all Christians have been progressively sanctified.
लेकिन तो हमारी स्थिति अवस्था परमेश्वर के सामने पवित्रता की है लेकिन और उसने किया है ये उसका काम है लेकिन सारे विश्वासी लोग प्रगतिशीलती से प्रगतिमान तरीके से धीरे धीरे पवित्रता में नहीं बढ़ रहे हैं वास्तविक व्यवहारिक पवित्रता में.
And the New Testament also talks in sanctification in this manner.
और इस तरीके से भी इस तौर से भी नया नियम पवित्रता के बारे में बात करता है.
Progressive or continuous or growing sanctification.
प्रगतिशील प्रगतिमान नियमित तौर से बढ़ने वाला धीरे धीरे बढ़ने वाला पवित्रता के बारे में भी बाइबल बात करती है. नया नियम विशेष तौर से बात करता है.
Now, when does this happen?
ये कब होता है?
It happens from the moment that we are spiritually born to the moment that we die.
और जैसे ही हम लोग आत्मिक तौर से पैदा होते हैं उस समय ये प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और जब तक हम लोग मर नहीं जाते हैं तब तक धीरे धीरे हम लोग पवित्रता में अग्रसर रहते हैं प्रगतिशील रहते हैं विकासशील रहते हैं बढ़ते रहते हैं.
Remember what Peter says.
याद है आपको पत्रस क्या कहता है?
First Peter chapter.
पहला पत्रस उसका कौन सा अध्याय? पहला अध्याय.
Two. Chapter two.
पहला पत्रस दूसरा अध्याय.
Very familiar verse.
बहुत ही जाना पहचाना पद है यहाँ पे.
Verse one he says, put aside all malice, deceit, hypocrisy, envy, and slander.
सब प्रकार का बैर भाव छल और पाखंड देश और सब प्रकार की निंदा को दूर रखो. पहला पत्र दूसरा देश का पहला पद.
Now look at verse two.
अब दूसरा पद देखिए.
Like newborn babes long for the pure milk of the word that by it you may grow in respect to salvation.
नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए ललायत रहो जिससे कि तुम उद्धार पाते जाओ.
He's talking about a process of growth.
यहाँ पे ये बात कर रहा है वृद्धि की एक प्रक्रिया के बारे में.
And what is the goal?
और लक्ष्य क्या है?
We to grow into the image and likeness of Jesus Christ. Christ.
हमें यीशु मसीह के समान उसके जैसा बनता चले जाना है.
His love.
उसके प्रेम में.
His purity.
उसके शुद्धता में.
His compassion.
उसके दया में.
His courage.
उसके साहस में.
His humility.
उसके नम्रता में.
His obedience.
उसके आज्ञाकारिता में.
We are to be changed and transformed into the likeness of Jesus Christ.
हमें यीशु मसीह के समानता में बदलते जाना है, परिवर्तित होते चले जाना है.
And it is a process of growth.
और ये एक वृद्धि की बढ़ने की प्रक्रिया है.
When a baby is born, you begin to give the baby milk.
जब बच्चा पैदा होता है तो आप उसको दूध देते हैं.
Then as it gets older, you begin to give it soft food.
और जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो आप उसको थोड़ा मुलायम खाना देने लगते हैं.
And then as it gets older, you're able to give it solid food.
और जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो आप उसको और ठोस खाना देने पाते हैं.
And it slowly begins to grow.
और फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है.
Now you're a full grown man.
अब आप पूरी तरह से बढ़े हुए आदमी लोग हैं, बुजुर्ग आदमी.
You become a full grown man in one day.
आप एक दिन में तो बड़े आदमी बनने गए कि नहीं बना ऐसे.
There is a principle in the Bible of progressive growth.
बाइबल में प्रगतिशील तरीके से बढ़ने का एक सिद्धांत पाया जाता है.
In the life.
जीवन में.
In a marriage.
विवाह में.
In a church.
कलीसिया में.
There is the process of progressive growth.
एक प्रक्रिया है धीरे धीरे अग्रसर होना, आगे बढ़ना. और जब हम लोग परमेश्वर वचन को लेते हैं,
as we pray to God,
जब हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं,
as we gather with the people of God,
और जब हम परमेश्वर के लोगों के साथ जमा होते हैं,
we begin to grow.
हम धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, वृद्धि करने लगते हैं.
And God does not want us any longer to be spiritual babies.
और परमेश्वर नहीं चाहता है कि अब हम लोग आत्मिक तौर से छोटे बच्चे, नवजात शिशु बने रहें.
Look in Hebrews chapter 5.
मेरे साथ इब्रानियों का पांचवा अध्याय खोल के देख लीजिए आप.
We are no longer to be spiritual babies.
और यहाँ पे कहता है अब हमें आत्मिक बच्चों के समान नहीं होना है.
He's in verse 11. He's talking about Melchizedek.
वो यहाँ पे पांचवे अध्याय में 11 पद में मलकीसदेक के बारे में बात कर रहा है.
And he says Jesus is a high priest according to the order of Melchizedek.
यहाँ पे कहता है यीशु मसीह मलकीसदेक के रीति पर युगानियुक याजक है.
Not according to the tribe of Levi.
वो लेवी के वंश के अनुसार नहीं.
But according to the tribe of Judah.
लेकिन यहूदा के वंश के अनुसार.
Now look at verse 11.
यहाँ पे 11 पद को देख लीजिए.
He said, "Now concerning him, we have much to say, but it's hard to explain because you're dull of hearing."
हमें उसके विषय में बहुत कुछ कहना है जिसका समझना कठिन है क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो.
Verse 12.
12 पद.
By this time you ought to be teachers.
तुम्हें अब तक तो शिक्षक हो जाना चाहिए था.
But you have need again for someone to teach you the basic principles of the Word of God.
फिर भी आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें फिर से परमेश्वर के वचन की प्रारंभिक शिक्षा दे.
And you have come to be able to drink only milk and not meat.
तुम्हें तो ठोस भोजन की नहीं परंतु दूध की आवश्यकता है.
Verse 13, for everyone that partakes only of milk is not accustomed to the word, he is a baby.
13 पद में कहता है प्रत्येक जो दूध ही पीता है वो धार्मिकता के वचन का अभ्यास नहीं क्योंकि वो बालक है.
Now many preachers in India are like that.
बहुत सारे प्रचारक भारत में इस तरह के होते हैं.
Their understanding is limited.
उनकी समझ बड़ी कम होती है.
And their character is limited.
और उनका चरित्र भी कम होता है.
And they ought to be more able teachers.
यद्यपि उनको और भी बेहतर शिक्षक होना चाहिए.
But they can still only take milk.
लेकिन वो लोग अभी भी खाली दूध ले सकते हैं.
They need just the most. They understand just the most basic things of the Word of God.
वो लोग परमेश्वर के वचन की खाली बड़ी ही आधारभूत बातों को समझते हैं केवल.
Look at verse 14.
14 पद देखिए.
He said, "Solid food is for mature people."
परंतु ठोस भोजन तो बड़ों के लिए है.
You can't take a piece of meat and give it to a baby.
आप एक छोटे से बच्चे को मांस का टुकड़ा नहीं दे सकते हैं.
Notice what he says. They have, because of practice, their senses trained to discern good and evil.
ध्यान दीजिए यहाँ पे कहता है 14 पद के आखिरी में जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास के कारण भले बुरे की पहचान करने में निपुण हो गई हैं.
If you don't grow in the knowledge of the truth,
अगर आप सत्य के ज्ञान में नहीं बढ़ेंगे.
If you don't grow in more deeper doctrine of the word of God,
अगर आप परमेश्वर के वचन की गहरी शिक्षाओं में नहीं बढ़ेंगे,
you will not be able to tell the difference between what is right and what is wrong.
तो फिर क्या सच है क्या गलत है उसमें भिन्न या भेद करना फर्क करना नहीं बता पाएंगे.
Your responsibility is to grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus.
आपकी जिम्मेदारी है कि आप यीशु मसीह के ज्ञान में और अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं.
Look at chapter 6 verse 1.
देखिए छठे अध्याय के पहले
पद में. He said, "We're to leave behind the basic teachings concerning the Christ."
कहता कि हम मसीह के विषय में प्रारंभिक शिक्षा को छोड़ करके आग से बढ़ते
ले press on to maturity.
और सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं.
He said there's certain basic things in the Christian life.
वो कह रहा है कुछ आधारभूत बातें होती हैं मसीह जीवन में.
Repentance and faith.
विश्वास और पश्चाताप.
Baptism.
बपतिस्मा.
The laying on of hands and gifts.
हाथ रखने के द्वारा दान पाना.
The resurrection of the dead and judgment.
मरे हुओं को जी उठना और उनका न्याय होना.
He said this is basic ABC truth.
वो तो कह रहा है ये सारी बातें तो बड़ी आधारभूत आभासा हैं.
But he said you are to grow in an understanding of the truth.
लेकिन अब हमको तो सत्य के ज्ञान में बढ़ना है, समझना है.
And you are to grow in Christian character.
और हमें मसीही चरित्र में भी बढ़ना है.
Look at 2 Peter.
देखिए मेरे साथ दूसरे पत्रस में.
2 Peter in chapter 3.
और दूसरे पत्रस के तीसरे अध्याय में.
The last verse in the book.
आखिरी पुस्तक है बाइबल में.
What does he say?
क्या कहता है वो वहाँ पे?
Chapter 3 verse 18.
तीसरे अध्याय उसके 18 पद में.
Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ.
हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाओ.
The grace of Christ.
अनुग्रह मसीह का अनुग्रह.
He probably means there the character and the life of Christ.
यहाँ पे शायद कहने का ये अर्थ है मसीह का चरित्र और मसीह के जीवन के अनुरूप होते चले जाओ.
And the knowledge of Christ.
और मसीह के ज्ञान में बढ़ते चले जाओ.
That is an understanding of the truth about Christ.
और ये यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में ज्ञान समझ में बढ़ते चले जाना.
Also means a deeper experiential relationship with Christ.
लेकिन यहाँ पे इसका ये भी अर्थ है कि यीशु मसीह के साथ और भी अधिक गहरा संबंध उसमें बढ़ते चले जाए.
And if you are a preacher,
और यदि आप एक प्रचारक हैं,
you are to grow.
तो आपको बढ़ना है.
And this is what progressive sanctification is talking about.
और यही है प्रगतिशील प्रगतिमान बढ़ता हुआ निरंतर अग्रसर पवित्रीकरण शुद्धीकरण.
Look at the next page, 1 John.
आइए मेरे साथ देख लीजिए पहला यूहन्ना अगले पृष्ठ पे पलट लिए अगला
पृष्ठ. 1 John in chapter 2.
दूसरा पत्रस के बाद पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय.
Look what he says in verse 12.
यहाँ पे देखिए ध्यान से 12 पद में देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे.
I'm writing to you little children because your sins are forgiven.
यहाँ पे कह रहा है कि हे बच्चों मैं तुमको लिख रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पाप क्षमा हुए.
Verse 13.
13 पद में.
I'm writing to you fathers because you've known him from the beginning.
पितरों मैं तुमको लिख रहा हूँ क्योंकि तुम उसको आदि से जानते हो.
Verse 13, I'm writing to you young men because you have overcome the evil one.
मैं तुमको लिख रहा हूँ कि जवान भाइयों क्योंकि तुम उसको आरंभ से तुमने दुष्ट के ऊपर विजय पाई है.
Look at the end of verse 13, I've written to you children because you know the Father.
तेरे पद के अंत में कह रहे बच्चों मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है क्योंकि तुम पिता को जानते हो.
Verse 14, I've written to you fathers because you know him.
14 पद में पितरों मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है क्योंकि तुम उसको जानते हो.
And then he says again, I've written to you young men because you are strong. And the word of God abides in you.
फिर 14 पद में कहते हैं मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है क्योंकि युवकों मैंने तुमको इसलिए लिखा है क्योंकि तुम बलवान हो परमेश्वर का वचन तुम्हें बना रहता है.
And I've asked you this question before.
मैं आपसे ये प्रश्न पहले भी पूछ चुका हूँ.
Is he talking about different stages of physical growth in the church?
क्या ये यहाँ पे कलीसिया के भीतर विभिन्न शारीरिक वृद्धि की अवस्थाओं के बारे में बात कर रहा है?
Is he talking about different stages?
शरीर की बात कर रहा है कि शारीरिक अवस्था की बात कर रहा है कि आत्मिक अवस्था की बात कर रहा है?
There are different stages of spiritual life and growth in the church.
कलीसिया में अलग-अलग अवस्थाएं हैं वृद्धि की प्रगति की.
And there are different spiritual experiences of the different people in the church.
और कलीसिया में अलग-अलग लोग होते हैं और अलग-अलग लोगों के विभिन्न तरह के आत्मिक अनुभव भी होते हैं.
And if you're going to be a pastor, you must understand those differences and be able to minister to each one.
और अगर आप पासवान हैं तो आपको उन फर्कों को समझ है और फिर उन अलग अलग लोगों के जीवन में उनके साथ सेविकाई करनी उसी अनुसार.
There are spiritual children in the church.
हमारी कलीसिया में कुछ लोग हैं जो आत्मिक तौर से बच्चे हैं.
Spiritual young men in the church.
हमारी कलीसिया में कुछ लोग हैं जो आत्मिक तौर से जवान भाई लोग हैं.
Spiritual fathers in the church.
हमारी कलीसिया में कुछ लोग हैं जो आत्मिक तौर से पिता के समान हैं.
Now listen carefully.
ध्यान सुनिए इस बात को.
Spiritual age and spiritual growth may not be equal.
और आत्मिक उम्र और आत्मिक प्रगति कभी कभी बराबर बराबर से नहीं चलती है.
In some churches there are old men but they are spiritually young.
और कभी कभी कुछ कलीसिया में बुजुर्ग लोग होते हैं लेकिन आत्मिक तौर से बड़े ही नासमझ होते हैं जवान होते हैं.
In some churches there are young men that are spiritually more mature.
Lekin kuch kuch kalisiyon mein jawan bhai log hote hain jo log aadmik taur se bade hi paripakv hote hain, bade hote hain, vriddhi ho chuki hote hain unki aadmik taur se.
And there are different experiences in the church.
Aur ek kalisiya mein vibhinn anubhav bhi hote hain.
Different levels of growth.
Alag alag star ki vriddhi.
And you must have discernment to recognize the different levels of growth and minister to them appropriately.
Aur aapke andar parakh ki aatma honi chahiye ki aap alag alag स्थिति को पहचान सके और फिर उसी अनुरूप उनके साथ सेविकाई कर सके.
Look in 1 Thessalonians.
मैं साथ पलट के पीछे देख ली पहला
थिस्सलोनिकियों. 1 Thessalonians and chapter 5.
पहला थिस्सलोनिकियों उसका पांचवा अध्याय.
And verse 12.
उसका बारह पद.
Everyone look at that verse.
हाँ आप सब लोग देख लीजिए उस पद को पहला थिस्सलोनिकियों पांचवा अध्याय का बारह पद. पहला थिस्सलोनिकियों पांचवा अध्याय का बारह पद.
Notice what Paul says.
देखिए यहाँ पे क्या कहता है पॉलस.
Now it's very important that you see these things in your own Bible.
बहुत जरूरी है कि आप इन बातों को अपने बाइबल में स्वयं देखें. पहला थिस्सलुनीकियों
के बारे में. It's not enough to listen to my voice.
केवल मेरी आवाज मत सुनिए लेकिन आपने बाइबल खोलिए.
It's not just enough to write down my words in your notebook.
जो मैं शब्द कह रहा हूँ उनको खाली अपनी किताबों मत लिख लीजिए लेकिन बाइबल खोलिए और अपनी बाइबल में खुद देखिए पहला थिस्सलुनीकियों के पांचवा अध्याय बारह पद में क्या हो रहा है.
You must see it in your own Bible.
आप स्वयं अपनी बाइबलों में अपनी आंखों से अपनी सामने रखी हुई बाइबल को देखिए.
So when you are preaching to people,
ताकि जब आप लोगों को प्रचार कर रहे हैं,
you want to see two things.
तो आप दो चीजें देखना चाहेंगे.
You want to see people's eyes.
आप लोगों की आंखों को देखना चाहते हैं.
And you want to see the top of their head.
और फिर आप उनके सरों को देखना चाहते हैं.
I told you that before.
मैं भी पहले ही बता चुका हूं आपको.
What do I mean?
मेरा कहने का क्या मतलब है?
When you preach to people,
जब आप लोगों से बात करते
हैं, you want to preach directly to them.
तब आप उनको सीधे तौर पे उनको प्रचार करना चाहते हैं.
A lot of preachers in China.
बहुत सारे प्रचारक चीन देश में.
They don't like to make people feel uncomfortable.
वे लोग लोगों को.
They don't like to.
असुविधा नहीं देने अनकंफर्टेबल आराम उनके आराम में दखल नहीं डालना चाहते हैं.
And they don't preach directly to people.
तो इसलिए वो लोग लोगों को सीधे तौर से नहीं प्रचार करना मांगते.
So sometimes Chinese preachers are like this.
तो कभी कभी चीनी प्रचारक लोग इस तरह से प्रचार करते हैं.
They say, well, brethren, today I want to talk to you from the word of God.
और आज भाई मैं आपसे परमेश्वर के वचन से बात करना चाहता हूं.
We want to look at something that's very important today.
और आज हम देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है.
And they'll talk for 1 hour.
और एक घंटे तक प्रचार करेंगे.
And they're looking at the back of the wall.
और वो पीछे जो दीवार है उसके ऊपर देख रहे हैं.
Brethren, now listen to me today.
और फिर वो कहते हैं,
I want to say two or three important things.
मैं आपसे दो या तीन बातें कहना
चाहता हूं. If you don't understand these things,
अगर आप इन बातों नहीं समझते,
you'll not be able to grow.
तो आप बढ़ नहीं पाएंगे.
Now, what if we met for 3 or 4 days and the whole time I was here, I was looking at the back of the wall?
अच्छा आप बताइए अगर हम लोग 3 या 4 दिन मिले हैं और पूरे टाइम 3 या 4 दिन जब मैंने प्रचार किया है मैं खाली पीछे की दीवार की ओर देखता रहता तो क्या होता.
What would you think?
तो आप लोग क्या सोचते हैं कि मेरे बारे में क्या सोचते हैं अगर मैं खाली दीवार पे देखता रहता और आपकी आंखों में नहीं देखता तो?
You would eventually turn around and say, "What's he keep looking at back?"
तो हो सकता थोड़े समय बाद, हो सकता थोड़े समय बाद आप पीछे मुड़ करके देखते हो क्या चीज़ देख रहा है दीवार के ऊपर?
Listen carefully.
ध्यान सुनिए इस बात को.
When you preach,
आधे लोग सो जाते हैं, आए भी सो जाते हैं तब क्या सोचते हैं?
When you preach,
जब आप प्रचार करेंगे,
use your eyes.
अपनी आंखों का उपयोग करिए.
It says in the book of Acts.
When
Peter and John spoke to a lame man.
पतरस और यूहन्ना ने लेम मैन एक लंगड़े आदमी से बातचीत किया.
It says they fixed their eyes upon him.
और वहां पे लिखा है कि उन्होंने उसके आंखों पे अपनी आंखें गड़ा दी, टकटकी लगा के देखा उसको.
And when you preach,
और जब आप प्रचार करें,
look at people.
तो आप लोगों को देखिए उनकी आंखों में.
Speak to them individually.
व्यक्तिगत तौर पे आप उन लोगों से बातचीत करिए.
And number two, you ought to see often the top of their head.
और दूसरी बात, ना सिर्फ आपको लोगों की आंखों में देखना है, कभी-कभी आपको लोगों के सरों को भी देखना है.
Not because they're sleeping.
इसलिए नहीं क्योंकि वो सो रहे हैं.
But why?
लेकिन क्यों आपको उनके सरों को देखना है?
Because they're looking at the Bible.
क्योंकि वो लोग नीचे झुक करके बाइबल में देख रहे हैं, तब आप उनके सर को देख रहे हैं.
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए इस बात को.
You must constantly call people back again and again to see things in their own Bible.
हमें बार बार लोगों को बुलाना है और उनसे कहना है कि आप अपनी बाइबल में वचन को स्थल को देखें, क्या बात जो हम करें वचन में है कि नहीं है.
It's not just enough for you to quote the verse.
ये काफी नहीं है कि आप बाइबल के पद का हवाला दें, उद्धरण करें.
We've quoted many verses here in these days without turning to them.
इन बिना बाइबल में पलटे हुए, हमने कई पदों का उदाहरण दिया, हवाला दिया आपके सामने, अवश्य है ये बात।
But you don't want to get in that habit.
लेकिन हमें नहीं चाहता कि आप इस आदत में पड़
जाएं। You want to tell people to look at the word of God.
आप प्रयास करिए और लोगों से कहिए कि अपनी बाइबल खोल करके देखिए इस पद को।
So they can see it with their own eyes.
ताकि वे लोग खुद अपनी आंखों से उन पदों को देख सकें।
And they can see how you are bringing that meaning out of the text.
फिर लोग देख सकें कि कैसे आप उस स्थल में से उस अर्थ को लेकर के आ रहे हैं।
So when we say look at 1 Thessalonians chapter 5
और जब हम कहते हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसका पांचवा अध्याय में देखिए,
we look at verse 12
और हम 12 पद में देखेंगे,
and verse 12 teaches us a basic important truth.
तो 12 पद हमको एक बड़ा ही आधारभूत महत्व बताता है, सत्य बताता है.
And what is that truth?
और वो सत्य क्या है?
That in the church there were different levels of spiritual experience.
कि एक कलीसिया में अलग-अलग स्तर के आत्मिक अनुभव हैं.
And that demands what I'm calling a discriminating sensitivity in ministering to each people according to their situation.
तो मेरा ये कहने का मतलब है अलग-अलग लोगों की परिस्थिति के अनुसार उनकी आत्मिक परिपक्वता को पहचानते हुए भिन्नता करते हुए उसी अनुसार हमें उनके साथ संवेदनशीलता के साथ बर्ताव करना है.
So look at the verse.
तो इस बात को देखिए मेरे साथ.
Do you see those two things?
क्या आप इन दो चीजों को देखते हैं कि नहीं देखते हैं?
The first point.
पहला,
in the church there were different levels and conditions of spiritual experience.
एक कलीसिया के भीतर अलग अलग भिन्न प्रकार के आत्मिक स्थिति और अनुभव पाए जाते हैं यहाँ पे.
I'm talking about verse 14.
मैं बात कर रहा हूँ 14 पद के बारे में.
Verse 14.
14 पद, इतनी देर से हम 12 बोल रहे हैं, 12 नहीं, लेकिन 14 पद की बात हम कर रहे हैं. 14 पद.
Different levels of spiritual experience.
14 पद में, 12 पद में नहीं, 14 पद में अलग अलग स्तर के अनुभव पाए जा रहे हैं यहाँ पे, दिखाई दे रहे हैं.
How can we pull that out of the text?
कैसे हम उस स्थल में से निकाल सकते
हैं? He says there are unruly people in the church.
वो कह रहा है यहाँ पे unruly.
The first thing.
It's lazy.
Yeah. There are faint-hearted people in the
church. और आलसी लोग हैं, कायर लोग हैं.
There are weak people in the church.
कमजोर लोग हैं.
There are different experiences in the church.
देख रहे हैं यहाँ तीन अलग-अलग तरह के अनुभव हैं लोगों में कलीसिया में. दूसरी बात,
you don't deal with them in the same way.
और ध्यान दीजिए कि आप इन तीनों जनों से एक ही तरह से बर्ताव नहीं करेंगे हम लोग.
Some people you admonish.
कुछ लोगों को हमें चेतावनी देनी
है. Some people you encourage.
कुछ लोगों को हमें प्रोत्साहन देना है.
Some people you help.
कुछ लोगों की हमें सहायता करनी है.
And you're patient with everyone.
लेकिन सबके साथ हमें सहनशीलता दिखानी है. क्यों?
Because a wise pastor understands the condition of the people.
क्योंकि एक बुद्धिमान पासबान अपने लोगों की स्थिति को समझता है.
And he's able to minister each one of them appropriately.
और वो हर एक जन के साथ उसी अनुरूप में व्यवहार करने पाता है.
Now, progressive sanctification, according to Paul, has two main parts.
और प्रगतिमान पवित्रीकरण के पौलुस के अनुसार दो चरण हिस्से खंड होते हैं.
We've talked about this before.
इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं.
What is the goal of sanctification?
पवित्रीकरण का लक्ष्य क्या है?
Your life,
आपका जीवन,
and the church's life,
और कलीसिया का जीवन,
is to grow into the image of Jesus Christ.
वो यीशु मसीह की स्वरूप समानता में बढ़ता चला जाए.
In all areas,
सारे क्षेत्रों में,
and every day,
प्रतिदिन,
not just Sunday at the church,
खाली रविवार के दिन कलीसिया के बाद नहीं,
but in their own heart,
लेकिन उनके स्वयं के हृदय में,
in their home,
उनके घरों में,
with their wife,
उनके पत्नियों के साथ,
with their children,
उनके बच्चों के साथ,
with their money,
उनके पैसों के साथ,
in the world,
संसार में,
in every area of life,
और उनके जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में,
we are to be growing in Christ's likeness.
हमें यीशु मसीह की समानता में बढ़ते चले जाना
है. So your wife can see your growth in Christ.
ताकि आपकी पत्नी यीशु मसीह के समान आप बढ़ने के लिए
उसको देख सके. So your children can see your growth in Christ.
तो आपके बच्चे देख सके कि आप मसीह में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे.
Your friends can see your growth in Christ.
आपके दोस्त लोग देख सके कि आप मसीह में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे.
first calling is not our ministry.
Hamari pehli bulahat hamari sevikai nahi hai.
Our first responsibility is not our preaching.
Hamari pehli zimmedari hamara prachar karna bhi nahi hai.
Our first calling in ministry is that we ourselves grow in Christ.
Hamari sabse pehli bulahat ye hai ki ke hum swayam masih mein badhne ki nahi badh rahe hain.
How do you influence people?
Aur aap logo ko kaise prabhavit karenge?
By your words.
Apne shabdon ke dwara.
And by your life.
Aur apne jeevan ke dwara.
What you teach.
Ye jo aap sikhayenge.
And what you live.
Aur jo aap jeevan vyatit karenge.
And if your life and your teaching is not the same, people will be confused.
Yadi aapka vachan aur aapka jeevan ek nahi hai to log bhramit honge, shanka mein pade aayenge, dikkat hogi.
So you must be growing.
To isliye aapko aur humko badhna hai.
Paul told Timothy.
Paulus ne Timothy se kaha.
Work hard and take pains with these things.
Mehnat karo aur in baaton ke liye dard uthao, kashth uthao, saho.
Why?
Kyun?
So your progress will be evident to all.
Taki aapki pragati sabke samne spasht hogi, dikhai degi.
So that when people see your life,
taki log jab aapke jeevan ko dekhenge,
see your family,
aapke parivar ko,
see your children,
aapke bachchon ko,
see your character,
aapke charitra ko,
slowly but surely there is growth.
Dheere parantu nishchit taur pe vriddhi dikhai degi aapke jeevan mein.
Now a little seed does not come a big tree in one day.
Aur ek jo chota beej hai ek hi din mein bada ped nahi ban jata hai.
But our goal is progressive growth.
Lekin hamara lakshya hai pragatishil vriddhi.
And sanctification progressive consists of two main important things.
Aur pragati maan pavitrikaran mein do khand, do hisse, do charan, do baatein paayi jati hain mukhyatah.
And what does Paul call them?
Aur kya Paulus kehta hai un dono baaton ko?
Number one, putting off the old man.
Pehli baat wo kehta hai purane manushyatva
ko utar do.
Dusri baat, naye manushyatva ko pehen lo.
That is mortifying and putting to death remaining sin.
Jo hamare bhitar bacha hua paap hai usko marna, uska nash karna, usko khatam karna.
And it means being renewed by the spirit of God and the word of God into the image of Christ.
Aur parmeshwar ke vachan ke dwara, parmeshwar ki pavitra atma ke dwara yeshu masih ke charit mein swaroop mein bante jale jana, parivartit hote
chale jana. Very basic but very important truth.
Bahut hi adharbhut किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य हैं ये.
Look in the book of Ephesians.
इफिसियों की पत्री को देख लीजिए.
We're talking about progressive sanctification.
हम बात कर रहे हैं प्रगतिशील पवित्रीकरण की.
I trust and know that you probably already believe this.
मेरी आशा है कि आप पहले से इस पे विश्वास करते हैं और मानते इन बातों को, जानते हैं बातों को. कि आप इसको पहले से जानते हैं.
But here is the question.
लेकिन प्रश्न ये है.
Is it becoming true in your life?
क्या सिर्फ आप इसको जानते हैं या आपके जीवन वास्तव में सत्य बनता जा रहा है?
And your preaching.
और आपके प्रचार में ये स्पष्ट है कि नहीं है.
When you teach other people.
जब आप अलग-अलग लोगों को प्रचार करते हैं.
Are you able to help them to grow?
क्या आप लोगों की मदद करने पाते बढ़ने के लिए?
Are you teaching them how to overcome the remains of indwelling sin?
क्या आप उनकी मदद करने पाते हैं कि उनके भीतर बचा हुआ पाप पे वो विजय पा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे?
Teaching them to become more and more like Jesus Christ.
क्या आप उनको सिखा रहे हैं कि उन्हें धीरे धीरे करके और भी अधिक यीशु मसीह के समान बनते चले जाना है?
True pastor.
एक सच्चा पास्टर.
A true teacher.
एक सच्चा शिक्षक.
Is not just concerned that people come to church.
सिर्फ इसकी चिंता नहीं करता कि लोग कलीसिया में आएंगे.
He's not just happy that people put money in the box.
वो सिर्फ इस बात से प्रसन्न नहीं कि लोग डब्बे में पैसा डालेंगे.
What is he concerned about?
वो किस लिए चिंता करता है?
He's concerned about their spirit. Your life.
वो उनके आत्मिक जीवन की चिंता करता है.
What does the book of Hebrews say?
इब्रानियों की पुस्तक क्या कहती है?
Obey your leaders and follow their leadership.
अपने अगुओं की सुनो और उनकी अगुआपन का पालन करो.
Why?
क्यों?
Because they watch for your soul.
क्योंकि वो तुम्हारे प्राणों की चिंता करते हैं, देख रहे
Not
करते
your
हैं.
Body.
तुम्हारे शरीरों की देख रहे
money.
तुम्हारे पैसे की देख रहे
They're
नहीं
concerned
हैं.
About your soul.
लेकिन तुम्हारे प्राणों की वो चिंता करते हैं.
Are the people growing?
क्या लोग बढ़ रहे हैं?
Are they becoming more like Christ?
क्या वो यीशु मसीह
Are they becoming more and more holy?
क्या वो और भी अधिक पवित्र बनते चले जा रहे हैं?
Are they overcoming sin?
क्या वो पाप के ऊपर विजय पाते जा रहे हैं?
A true pastor knows the people.
एक जो सच्चा प्रचारक है वो अपने लोगों को जानता है.
He knows their name.
वो उनका नाम जानता है.
He knows their family.
उनके परिवार को जानता
है. He knows their children.
उनके बच्चों को जानता
है. He knows their spiritual condition.
उनकी आत्मिक स्थिति को जानता
है. He knows their particular problems.
उनकी विशेष समस्याओं को जानता
है. He knows their special weaknesses.
वो उनकी कमजोरियों को जानता
है. He's concerned for them
aur unke liye chinta karta hai
and he prays for them
aur unke liye prarthna karta hai
and he teaches them
aur unko sikhata hai
and he spends time with them
aur wo unke sath samay vyatit karta hai
and he tries to help them to grow
aur وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ لوگ بڑھتے چلے جائیں.
That is his concern.
یہ اس کی چنتا ہے.
Ephesians chapter 4.
Ephesians کا چوتھا ادھیا.
Verse 11.
پہلا پد.
Christ gives gifts to the church.
مسیح کلیسیا کو دان دیتا ہے.
And some of those churches are pastors and teachers.
اور میں سے کچھ ہیں جو پرچارک ہیں اور شکشک ہیں.
And what do they do?
اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں پھر؟
They teach the word of God.
پرمیشور کے وچن سکھاتے ہیں وہ لوگ.
And what is their goal?
اور ان کا لکش کیا ہے؟
So that the people of God can grow.
تاکہ پرمیشور کے لوگ بڑھتے چلے جائیں.
What does Paul say in 1 Timothy chapter 1?
پہلے تیموتھی کے پہلے اتھائے میں پولس کیا کہتا ہے؟
And verse 5.
اس کے پانچویں پد میں.
Why do we teach the truth? He said.
کیوں سکھاتے ہیں ہم لوگ سچ کو پولس؟
Why do we instruct the people of God?
اور کیوں ہم پرمیشور کے لوگ سکھاتے ہیں؟
What is our goal?
ہمارا لکش کیا ہے؟
What is our desire?
اور دیش کیا ہے؟
What do we look for in the people?
ہم لوگوں کے بھیتر کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟
He said the goal of our instruction is love.
کہ ہمارے ان آدیش کا ابھیپرائے پریم ہے.
A true pastor is concerned that the people grow in true love.
اور ایک سچا پاسبان کی چنتا یہ ہوتی کہ لوگ سچے پریم میں بڑھیں.
Why is that important?
کیوں مہتوپورن ہے یہ؟
Because Jesus says love is the mark of the disciple.
کیونکہ یشو مسیح نے کہا ایک شش کے جیون میں سب سے بڑا چن
By this they will know that you are my disciples, that you have love for one another.
اس کے دوارا لوگ جانیں گے کہ تم میرے شش ہو جب تم ایک دوسرے سے پریم رکھو گے کرو گے.
Is love important?
Kyun prem mahatvapurna hai?
Because Paul says love is the fulfillment of the law.
Kyunki Paulus ne kaha hai prem jo hai vyavastha ki paripurnata hai.
It motivates our obedience.
Wo hamari aagyakarikta ko prerit karta hai.
Why is love important?
Kyun hai prem mahatvapurna?
Because Paul says without love all of our ministry is useless.
Kyunki Paulus kehta hai bina prem ke hamari sari sevakai barbaad hai, bekar hai, koi kaam ki nahi hai.
Why is love important?
Kyun prem mahatvapurna?
Because Peter says love covers a multitude of sins.
Kyunki پتس کہتا ہے کہ پریم جو ہے ڈھیر سارے پاپوں کو ڈھانک دیتا ہے.
So we want to see people grow in love.
تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ پرمیشور کے پریم میں
بڑھ
رہے ہیں.
God, love to God,
پرمیشور کے پرتی پریم.
Love to man,
لوگ کے پرتی پریم.
Love to their wife,
اپنی پرتی کی پتنی کے پرتی پریم.
Children,
بچوں کے پرتی پریم.
Love to the church,
کلیسیا کے پرتی پریم.
Love to the world,
دنیا کے پرتی پریم.
And what is love?
اور پریم کیا ہے؟
You remember we studied that before.
آپ کو یاد ہے ہم نے اس کے بارے میں پہلے ادھیان کیا تھا. سچا بائبل پر آدھارت
ہے. Has three basic truths.
اس میں تین آدھاربھوت ستیہ
ہوتے ہیں. Number
one, پہلی بات.
It is a felt affection of the heart.
ہردے کا محسوس کیا ہوا پریم سنیہ ہے.
Number two,
دوسری بات.
It is a volitional commitment of the will.
اور ہمارے سوئم کی اچھا کے سوتنترتا کے ساتھ سوچھا کے ساتھ سمرپن.
Number three,
تیسری بات.
It is a sacrificial expression of the life.
اپنے جیون کا تیاگ پورن ابھیویکتی.
Love is the whole man.
پریم ایک سمپورن ویکتی.
His heart,
اس کا ہردے.
His will,
اس کی اچھا.
And his life,
اس کا جیون.
That is true love.
یہ ہے تینوں چیزیں جو اس میں شامل ہوتی ہیں سچے پریم میں.
And that is what Paul said he had.
اور یہی پولس کہتا ہے کہ اس کے اندر تھی.
1 Thessalonians 2.
پہلا تسلونیکیوں 2.
Having a fond affection for you, brethren, he said.
اور وہ کہتا ہے تم بھائی لوگوں کے لیے سنیہ بھرا پریم میرے اندر ہے.
We were willing.
اور ہم تیار تھے.
To give you not only the gospel, but to give you our very lives.
وہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں خالی سوسمچار نہیں دینا چاہتے لیکن ہم سوسم کا جیون بھی دینا چاہتے تھے. کیوں؟
Because you are very dear to us.
کیونکہ تم ہمارے لیے اتنے پریے ہو گئے تھے.
So our goal in our teaching is to produce Christian growth and character in the people.
ہمارا لکش ہے کہ ہم لوگوں کے جیونوں میں سچ پرمیشور کے پریم کو بڑھتے ہوئے دیکھتے جائیں اپنی شکشا.
That's not your goal.
اگر یہ آپ کا لکش نہیں ہے
the people will not grow.
تو لوگ بڑھیں گے نہیں.
Where does this love come from?
اور کہاں سے یہ پریم آتا ہے؟
What does Paul say?
پولس کیا کہتا ہے؟
1 Timothy chapter 1 verse 5.
پہلا تو پہلا ادھیائے 5 پر.
It comes from three sources.
تین جگہوں سے آتا ہے، سوتروں سے آتا ہے.
A pure heart.
شدھ ہردے.
A good conscience.
اچھا ہردے.
And a sincere faith.
اور گمبھیر وشواس.
As a man is growing in inward purity.
اور جب ایک ویکتی بھیتری شدھتا میں بڑھتا جا رہا ہے، پوتر ہردے شدھ وویک نشکپٹ وشواس.
Keep a good conscience in the sight of God and man.
اور وہ لوگوں کے سامنے پرمیشور کے سامنے ایک شدھ وویک کو رکھنے پاتا ہے.
And he has a real sincere faith. He's not a hypocrite.
اور اس کے سامنے ایک سچا ستیہ نشٹھا کا وشواس ہے، پریم ہے، وہ دھوکے باز نہیں ہے.
True love comes out of these sources.
انہی کے دوارا سچا پریم آتا ہے.
And if you're a pastor,
اور اگر آپ پاسبان ہیں،
You have one concern.
तो आपके सामने एक ही चिंता होनी चाहिए.
The souls of your people.
आपके लोगों के प्राणों की चिंता होनी चाहिए आपको.
And you're concerned about them.
और आपको उनके अंदर उनके लिए चिंता होनी चाहिए.
And you're burdened for them.
और आपको उनके अंदर बोझ होना चाहिए उनके लिए.
And you pray for them.
और आप उनके लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए आपको.
That is your burden.
ये है आपका बोझ.
Because you want to see them grow.
क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि वो लोग बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं.
There's a little baby back there in the corner.
और वहाँ पे पीछे एक छोटे से बच्चा बैठा हुआ है.
It's a little girl.
एक छोटी सी लड़की है.
And she's very beautiful.
वो बहुत सुंदर है वो.
Their parents love her.
और उसके माता-पिता उसे प्रेम करते हैं.
What if a year later she was the same size and the same appearance?
और मान लीजिए कि एक साल के बाद उसी आकार की होती और उसी तरह से दिखती.
5 years later.
5 साल के बाद.
She had not grown.
वो बड़ी नहीं और वैसी है.
She couldn't talk.
बात नहीं कर पाती है.
She could only drink milk.
खाली दूध पी पाती है वो.
She could barely walk.
और ठीक से भी नहीं चल पाती है.
She couldn't think.
और सोच भी नहीं पाती ठीक से.
Would the parents be concerned for that child?
क्या माता-पिता को उस बच्चे के लिए चिंता होगी?
If you're a true pastor,
अगर आप एक सच्चे पासवान हैं,
you are concerned for the growth of the people of God.
तो आप अपने लोगों की वृद्धि के लिए चिंता करेंगे.
Paul said, "Now we really live if you stand fast and grow in the Lord."
और पौलुस कहता है कि अगर तुम प्रभु में बढ़ते हो और वृद्धि कर रहे हो तो हम वास्तव में जीवन जीते हैं तब.
एंड इफ यू डोंट लव पीपल,
अगर आप लोगों से प्रेम नहीं करते हैं.
मेनी प्रीचर्स से दिस,
बहुत सारे प्रचारक ये कहते हैं,
आई लव टू प्रीच,
मुझे प्रचार करने का बहुत पसंद है, बहुत
प्यार करता हूं, आई जस्ट डोंट लाइक पीपल,
लेकिन लोगों को नहीं पसंद करता हूं मैं.
I love to stand up here and preach.
और कुछ लोग कहते हैं कि सामने खड़े होकर मुझे प्रचार करने में बहुत आनंद आता, अच्छा लगता है.
But the people are a lot of trouble.
लेकिन लोग तो बड़ी ही समस्या का कारण होते हैं.
The sheep stink.
आपको मालूम है जो भेड़ें होती हैं उनमें से बदबू आती है.
And I don't like to be around stinky sheep.
और इसलिए मुझे जो बदबूदार भेड़ें हैं उनके आसपास रहना पसंद नहीं है.
But a true leader.
लेकिन एक जो सच्चा सेवक अगुआ है वो उनके प्राणों की चिंता करेगा.
He has one concern.
और उसकी एक ही मुख्य चिंता होगी.
That they grow.
कि वे लोग आत्मिक तौर से बढ़ रहे हैं, प्रगतिशील पवित्रीकरण में.
Is that your burden?
क्या ये आपका बोझ है?
Is that your desire?
क्या ये आपकी इच्छा है मन की?
Christ loves his church.
कलीसिया यीशु मसीह अपनी कलीसिया से प्रेम करता है.
It is the bride of Christ.
वो कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है.
And he wants to see it grow.
और यीशु मसीह उसको बढ़ते हुए देखते रहना चाहते
हैं. Sanctification has two parts.
पवित्रीकरण के दो हिस्से हैं.
Putting off the old man.
पुराने मनुष्य को उतारना.
And I remember this.
याद रखिए इस बात को.
We are pardoned from the guilt of sin.
याद रखिएगा, हमें पाप के दोष से क्षमा मिल चुकी है.
There is no condemnation now for those that are in Christ Jesus.
अब जो यीशु मसीह में उन पे अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रही.
We have been freed from the bondage and dominion of sin.
अब हमें पाप के बंधन से और पाप के साम्राज्य प्रभाव से छुड़ा लिया गया है.
He says in Romans chapter 6, you were once enslaved to sin, but now you are freed from the guilt and the bondage of sin.
तो वो कहता है हम एक समय पाप के बंधन में थे, लेकिन अब हम पाप के बंधन से और उसके प्रभाव से छुड़ा लिए गए.
But we still have the presence of remaining sin within us.
लेकिन पाप का बचा हुआ उपस्थिति अभी भी हमारे
It's
अंदर
guilt.
है.
Guilt has been pardoned.
उसका दोष तो हमारे पास क्षमा हो
गया. Bondage and dominion has been broken.
उसके बंधन और उसका साम्राज्य प्रभाव हमारे
within us.
लेकिन उसकी उपस्थिति हमारे अंदर अभी भी पाई जाती है.
Paul calls it the old man or the flesh.
पौलुस उसको पुराना व्यक्ति या शरीर कहता है.
And the Bible says, Paul says in Galatians 5, the flesh fights against the spirit and the spirit against the flesh.
और पौलुस कहता है कि शरीर आत्मा के विरुद्ध में, आत्मा शरीर के विरोध में पाप करता लड़ता रहता है.
But sanctification has two parts.
लेकिन पवित्रीकरण के दो हिस्से हैं.
Putting sin to death.
पाप को मारना.
And being renewed into the image of Christ.
और यीशु मसीह के समानता स्वरूप में बनते चले जाना.
Now we've talked about that many times before.
इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं पहले.
But your responsibility is to teach the people concerning their battle against remaining sin.
अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को सिखाएं उनके युद्ध के बारे में जो उनके शरीर में बचा हुआ पाप है उसके विरोध में जो उनको करना है उसके बारे में
सिखाएं. And to continue to give them instruction and encouragement so they can grow.
और आप उनको निर्देश देते रहें और उत्साहित करते हैं ताकि वो लोग बढ़ते रहें इस क्षेत्र में.
So the question is this.
तो आप प्रश्न ये
Are you growing?
क्या आप बढ़ रहे हैं?
Are you maturing?
क्या आप परिपक्व हो रहे हैं?
Are we becoming more like Christ?
क्या आप यीशु मसीह समान हो रहे
हैं? Do our friends see the difference?
क्या हमारे दोस्त लोग हमारे फर्क देखने पड़ते हैं?
Is our progress evident to all?
क्या ये लोग सामने दिखाई दे रहा है स्पष्ट है कि नहीं?
I gave you some homework last time I was here.
मैं जब पिछली बार यहाँ पे था तो मैंने आपको कुछ गृह कार्य दिया था.
And I said, go home and sit down with your wife.
और मैंने कहा था अपने घर जाइएगा अपनी पत्नी के साथ बैठिएगा.
And ask her this question.
और अपनी पत्नी से पूछिएगा ये प्रश्न.
What are my sins?
मेरे पाप क्या हैं?
What are my weaknesses?
मेरे कमजोरियाँ क्या हैं?
Am I growing?
क्या मैं बढ़ रहा हूँ?
Am I becoming more like Jesus Christ?
क्या मैं यीशु मसीह के समान बनता चला जा रहा हूँ?
Oh, you say, but Indian men don't do that.
लेकिन हो सकता है आप कहेंगे भारतीय आदमी लोग ऐसा नहीं करते हैं.
I'm a man.
मैं तो आदमी हूं, मर्द हूं, असली मर्द.
My wife doesn't tell me anything.
मेरी पत्नी मुझे कुछ नहीं बता सकती, उसको क्या मालूम है.
Listen carefully.
ध्यान सुनिए इस बात को.
A true man.
एक असली मर्द.
Is a humble man.
वो नम्र मर्द होता है.
And he's willing to be instructed.
और वो सीखने के लिए तैयार होता है.
And he's willing even to listen to his wife.
और वो अपनी पत्नी की भी सुनने के लिए तैयार होता है.
We're not talking about Indian Christianity.
हम भारतीय मसीहत के बारे में बात
कर रहे हैं. We're talking about biblical Christianity.
हम लोग बाइबल पे आधारित मसीहत के बारे में बात कर रहे हैं.
Now you got two choices.
अब आपके सामने दो चुनाव हैं.
You're going to be an Indian Christian.
या तो आप एक भारतीय मसीही हो जाएं.
Or you're going to be a Christian Indian.
और या तो एक मसीही भारतीय हो जाएं. समझ आया कि नहीं आया? फर्क समझ आया?
What's the difference?
फर्क क्या है दोनों में? एक one is according to the Bible, one is according to the culture.
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए इस बात को.
You are an Indian.
आप भारतीय जरूर हैं.
But your first identity
लेकिन आपकी पहली पहचान
is as a Christian.
वो एक मसीही की है.
And you do not live according to culture or tradition.
और आप अपने संस्कारों या अपने रीति रिवाजों के अनुसार हम लोग नहीं जीते.
Live according to the word of God.
हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं.
And if all of culture says an Indian man has got to go this way.
और अगर सारा समाज सारा संस्कार हमको कहता है कि भारतीय मर्द को इस रास्ते पे जाना चाहिए.
But the Bible says a true man goes this way.
लेकिन बाइबल कहती है कि जो सच्चा मर्द है वो इस दिशा में जाएगा.
You got two choices.
तो आपके सामने दो चुनाव हैं.
Indian Christian or Christian Indian.
भारतीय मसीही या मसीही भारतीय.
And so in your life
तो इसलिए आपके जीवन में
and in my life,
और मेरे जीवन में
we need to be growing.
और हमें बढ़ते रहना है.
So I often ask my wife,
तो मैं अक्सर अपनी पत्नी से कहता हूँ,
where am I failing?
मैं कहाँ कहाँ असफल होना बताऊँ?
And she's very willing to tell me.
और वो बहुत ही तैयार रहती मुझे बताने के लिए.
Because I want to grow.
क्योंकि मैं बढ़ना चाहता हूँ.
And I want to become more like Jesus Christ.
और मैं यीशु मसीह के समान और बढ़ना चाहता हूँ.
So that my progress will be evident to all.
ताकि मेरी प्रगति सबके सामने स्पष्ट दिखाई दे.
So this is progressive sanctification.
तो ये है प्रगतिमान प्रगतिशील पवित्रीकरण.
So if you haven't done the homework I gave you several months ago,
तो कई महीने पहले जो मैंने आपको गृह कार्य दिया था अपनी पत्नी से आगे बात करने का, अगर आपने उसको नहीं किया है,
go home and try it again this time.
तो इस बार आप वापस जाइए और अपनी पत्नियों से बात करिए जिनके पास पत्नियां हैं.
Because God wants us to grow.
क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम बढ़ें.
Well, let's pray.
आइए हम लोग प्रार्थना करें.